आज की बात। श्रोताओ, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत नियंत्रित कश्मीर की, जहां हाल ही में भाजपा और पीडीपी साझा सरकार समाप्त हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को दिया गया समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद राज्य में गवर्नर राज लागू हो गया। इसके साथ ही दोनों दलों ने एक दूसरे पर टिप्पणियाँ की। भाजपा और आरएसएस के नेता तथा कश्मीर में साझा सरकार के सूत्राधार कहे जाने वाले राम माधव ने महबूबा मुफ्ती सरकार को विफल बता दिया।
आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं।
महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के बारे में भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठाया।
हमारा हमेशा ये मानना रहा है, जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर में वही कार्ड फ्रीड जम्मू कश्मीर एज एन एनिमी टेरिटरी, ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है।
कांग्रेस का कहना है कि वो इस समय पीडीपी के साथ मिलकर कोई वैकल्पिक सरकार देने के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं रखते। यहीं से नई बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि भाजपा सोच समझकर इस गठबंधन से बाहर आई, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने का असर राज्य और राष्ट्र दोनों की राजनीति पर पड़ने वाला है। भाजपा को ऐसा लग रहा था कि जम्मू में उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। गठबंधन से अलग होकर भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि वो अलगाववादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना चाहती है। बहुत से टीकाकार ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भाजपा सारी विफलताओं के लिए महबूबा सरकार को जिम्मेदार तो ठहरा रही है, लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा खुद सरकार में शामिल थी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ।
बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो हर चैनल पर, खासकर राम माधव, क्योंकि वो इंटरलोक्यूटर थे उस वक्त जब सरकार बनी थी, सफाई देते फिर रहे हैं कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए ये सब किया, क्योंकि हिंसा पर काबू नहीं हो रहा था, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरा जिम्मा पीडीपी की सरकार पर थोपना चाहते हों। ये अपने आप में बहुत ही एक इमेच्योर किस्म का बयान होता है। आप भी सरकार में उतने ही शामिल थे जितनी पीडीपी शामिल थी, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं, आप अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं, कि जैसे पीडीपी और आप बराबर के पार्टनर नहीं थे, जिम्मा पीडीपी का बनता है, वो अपना जिम्मा पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा हम बाहर आ गए। आप क्या मेहमान थे सरकार में? आप भी भागीदार थे सरकार में, पूरे पूरे भागीदार थे सरकार में। बहरहाल ये बात अब सामने आ रही है कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी को भनक तक नहीं थी कि ये लोग अपना समर्थन वापस लेने जा रहे हैं बीजेपी वाले। अगर आप मिलजुल कर सरकार चला रहे हो तो पहले आप किसको बताओगे, किससे डिस्कस करोगे? क्या ऐसे हालात उनको मालूम थे? उनको भनक तक नहीं थे कि ये झटके से एकदम बाहर हो लेंगे। जब संभल नहीं रहा मामला तो उसकी बदनामी के छींटे खुद पर ना आए, इसलिए ये जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाएंगे, बाहर होंगे। महबूबा मुफ्ती को बिल्कुल भी नहीं मालूम था, वो उस वक्त एक मीटिंग में थी सिविल सेक्रेटेरिएट में, मंगलवार की जो दोपहर थी उस वक्त, जब ये फैसला उन तक पहुँचा, जब बीजेपी ने अनाउंसमेंट करी। नईम अख्तर है एक पीडीपी के मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक ऐसा कदम जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी ये हुआ। और महबूबा मुफ्ती का कहना है, जब चुनाव हुए थे हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला वाली, उसने भी सपोर्ट की ऑफर की थी, कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन हमने बीजेपी के साथ जाना चुना क्योंकि जम्मू के लोगों की जो भावनाएं थी उनको भी शामिल करना था, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था 25 सीटों का उसको भी शामिल करना था, इसलिए हमने बीजेपी को चुना था। बीजेपी ने अपने पार्टनर के साथ एक दफ़े बैठकर ये चर्चा करना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हम समर्थन वापस ले सकते हैं।
अब भाजपा जो कर रही है वो 2019 के चुनावों को नज़र में रखकर कर रही है, ये अनेक राजनीतिक टीकाकारों का कहना है। इन टीकाकारों का ये मानना है कि इससे राज्य और देश स्तर पर ध्रुवीकरण तेज होगा, राज्यपाल शासन में सैनिक गतिविधियां तेज होंगी, सेना के माध्यम से हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिशों को भी भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में भुना सकती है। भाजपा के सभी विधायक पहले दिल्ली बुलाए गए, उसके बाद ये फैसला किया गया। ये भी सही है कि सीज फायर को लेकर दोनों पार्टियों में मतभेद थे। महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, हालांकि इसके दो फायदे हुए। पहला ये लगा कि सरकार शांति प्रक्रिया फिर से शुरू करना चाहती है, भले ही वो नहीं कर पाई। दूसरा ये कि आम नागरिकों की मौतें इस दौरान कम हुई। सीज फायर के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएँ भी कम बताई जाती हैं। पुलिस और सेना को फायरिंग नहीं करनी पड़ी, इस प्रकार की रिपोर्टें हैं। भाजपा आगामी चुनावों में देश को बताना चाहती है कि उसकी सरकार मुसलमान अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इससे उसे फायदा पहुंच सकता है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का मानना है कि भाजपा कश्मीर के मुद्दे को राजनीतिक समस्या के बजाय कानून व्यवस्था की समस्या समझकर उससे निपटना चाहती थी, जो कि गलत सोच थी।
सबसे पहले तो ये है कि बीजेपी जो है वो कश्मीर को एक लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरह ट्रीट कर रही है, कानून और व्यवस्था के इशू की तरह ट्रीट कर रही है कि यहाँ पत्थरबाजी भी होती है, यहाँ आतंकी घटनाएं भी होती हैं, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन भी होती हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये अपने आप में सही है? कश्मीर की समस्या क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या डंडे से हल होने वाली प्रॉब्लम है? डंडा चलता आ रहा है और अभी जैसा ये सरकार गिर गई है, ख़त्म हो गई है, अमरनाथ यात्रा के बाद डंडा जोर से चलेगा, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या कश्मीर की समस्या सियासी समस्या है या लॉ एंड ऑर्डर समस्या है? पहला सवाल। दूसरा जो सवाल उठता है वो ये है कि दिसंबर सन 2014 में जब चुनाव की रैली हो रही थी तो प्रधान सेवक ने ये कहा था कि वो कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं, जो घाटी से बाहर हुए, जो इतने सालों से घाटी से बाहर रह रहे हैं, उनको दोबारा वहाँ बसाया जाएगा। कश्मीरी पंडित उनके इस वादे पर यकीन कर गए और उन्होंने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट किया। उसके बाद से प्रधान सेवक कुछ नहीं बोले हैं इसके बारे में, ना ही बीजेपी ने बोला है। इतने साल सरकार भी रही है, क्या एक भी पंडित परिवार वापिस गया है, उसको वापिस बसाया गया है?
टीकाकार ये कहते हैं कि पिछले चार सालों में शांति प्रक्रिया के नाम पर कुछ नहीं हुआ, आशा थी कि कुछ होगा पर ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के युवा जो कारगिल युद्ध के बाद पैदा हुए हैं और आज जिनके हाथों में पत्थर हैं, वो ये नहीं मानेंगे कि शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। राज्यपाल का शासन लग जाने के बाद जहां ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कठोर कार्यवाही होगी और हिंसा बढ़ेगी, वहीं इसी बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके सैफुद्दीन सोज के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के उस बयान पर सहमति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी कश्मीरियों की पहली पसंद है। सैफुद्दीन सोज का कहना है कि कश्मीर के लोग तब भी आज़ादी चाहते थे और आज भी आज़ादी चाहते हैं।
मुशर्रफ ने कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आज़ादी दूसरी तरीके से मिल सकती है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियाँ न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले पांच खत्े और अब हिंदुस्तान के जेर इंतज़ाम तीन खत्े हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा और कोई उनकी इज्जत का कोई सौदा गलत नहीं होगा।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में टूटे भाजपा और पीडीपी गठबंधन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इन दोनों सरकारों के चलते सबसे ज़्यादा सैनिक मारे गए और सैकड़ों बच्चों की आंखें चली गईं। इन्होंने आर्थिक तौर पर स्टेट को कंकाल कर दिया, पर्यटन को ठप कर दिया, इन सब चीज़ों के लिए भाजपा और पीडीपी दोनों जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों की भाजपा ने आलोचना की। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं के बयान लश्कर समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ी है। इस समय जो हालात हैं उनमें ये बात बार बार कही जा रही है कि कश्मीर में हालात अब और ख़राब हो सकते हैं क्योंकि कश्मीरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बढ़ सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले के अपने बयान में ये बात मान चुके हैं कि कश्मीर की समस्या को ताकत से नहीं सुलझाया जा सकता।
न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है।
बीबीसी उर्दू के कार्यक्रम में कश्मीरी युवाओं की हताशा साफ झलकती है।
इस वक्त का यूथ यही कह रहा है कि भाई हम आज़ादी सिर्फ बंदूक की नोक पे ही ले सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें दे हैव ड्रैग्ड अस द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया हैव ड्रैग्ड कश्मीर फ्रॉम 1947 टू द AK-47।
यहाँ के मतलब पॉलिटिशियंस इंडिया के बता रहे हैं कि कश्मीर की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान मतलब अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कोई सिंपथी दिखा रहे हैं तो उनको लगता है वो हमें इंस्टिगेट करें, वो हमें प्रोवोक करें, वो हमें उकसा रहे हैं, लेकिन वो उकसा नहीं रहे हैं। वो बस ये बता रहे हैं कि हमें दुख है तुम्हारे इतने लोग इतने दिनों में मर गए।
हमारे लिए बुरहान वानी एक ऐसा सिविलियन था पहले वो, जिसने कि आज़ादी की राह में थोड़ा आगे बढ़ के अपनी आवाज़ उठाई, लोगों की आज़ादी के लिए लड़ा और कम से कम अपने लिए आज़ाद हो गया वो। अब हिंदुस्तान उसको दूसरे तरीके से देखता है, उसमें उनकी ये गलती है कि उनको जो ग्राउंड सिचुएशन है कश्मीर की वो नहीं पता है।
कश्मीर की परिस्थितियां काफ़ी जटिल हैं। कश्मीर के मामले के सहारे राजनीति चमकाने की कोशिश करना किसी भी तरह ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे ख़राब परिणाम निकल सकते हैं।